नमस्कार, स्वागत है आपका कृषक मंच में। श्रोताओं, आज कृषक मंच में हम बात करेंगे मुर्गियों का पालन कैसे करना चाहिए, और इस पर आपको जानकारी देंगे डॉक्टर अनिल कुमार राय जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कृषक मंच में।
जी, जैसा कि आप सुन रहे हैं किसान भाई, तो आपने कहा कि मुर्गी का पालन पोषण कैसे किया जाए, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मुर्गी पालन जो भी किसान भाई अपनाना चाहते हैं, चाहे वो प्रारंभ कर दिए हैं या जो किसान भाई शुरू करना चाहते हैं, वो दो तरह से मुर्गी पालन का काम हम लोग करवाते हैं, एक तो अंडे के लिए, एक मांस के लिए। लेकिन इसमें जो सबसे पहली बात आप सभी किसान भाइयों को ध्यान देने योग्य है, उसमें यह है कि कैसे मुर्गी पालन किया जाए, किन किन बातों के ऊपर ध्यान रखा जाए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो किसान भाई चाहे अंडे के लिए मुर्गी पालन करें, चाहे मांस के लिए करें, वो ये सुनिश्चित कर लें कि उनको कहाँ पे मुर्गी फार्म बनाना है या उनका आवास कहाँ पे बनाना है। तो जो जिस स्थान का चुनाव करना है, जिसको हम कहते हैं स्थान का चुनाव, वो जगह ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पे पानी न रुकता हो, जगह या जमीन बहुत नीची न हो, ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए। और अगर कोई ऊसर जमीन हो जहां पानी न लगता हो, ऊंचा हो, खेती योग्य न हो, तो वो भी स्थान आप चुनाव कर सकते हैं, ये मुर्गी पालन के काम आ जाएगा, इसमें किसी तरह का रुकावट नहीं हो सकता। दूसरी चीज जो आपको ध्यान देने की बात है वो मुर्गी पालन में कि आपके पास बाजार होना चाहिए, चाहे अंडे का काम आप कर रहे हैं या मांस का काम कर रहे हैं, वो बाजार आपके पास होना चाहिए जहां आपका अंडा बिकेगा, जहां आपका मांस के लिए मुर्गियां बिकेंगी। तो बाजार का चुनाव भी आपको ध्यान रखना है कि बाजार नजदीक हो। तीसरा जो आपको ध्यान रखना है बात, वो जो फार्म आप बनाने जा रहे हैं वहां आने जाने का रास्ता अच्छा हो, रोड के किनारे हो तो बेहतर है, लेकिन अगर मेन रोड पे नहीं है तो भी वहां पे कम से कम ट्रक गाड़ी आदि आने जाने का साधन हो, जिससे आपको फार्म पे चाहे फीड लेना हो या आपको अंडे बेचना हो, वहां पे साधन आसानी से आ जा सके, तो आपको सुविधा उसमें रहेगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे आप अच्छा मुर्गी पालन का काम कर सकेंगे।
डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि हमारे बहुत से किसान भाई मुर्गी पालन करना चाहते हैं, तो आप इस बात पर प्रकाश डालिए कि वे मुर्गी पालन का कार्य अंडे के लिए करें या फिर मांस के लिए।
ऐसा है, देखिए, दो तरह का हम लोग मुर्गी पालन का काम करवाते हैं या किसानों को उसको सलाह देते हैं। एक तो अंडे के लिए किसान मुर्गी का पालन कर सकते हैं, दूसरा मांस के लिए। लेकिन हम जब किसान को बताते हैं पहली बार, तो किसान से ये अपेक्षा करते हैं कि उसको बहुत सारी जानकारियां पहले से नहीं होती हैं, तो एक तो वो बहुत छोटे स्तर पे करेगा। अगर अंडे का काम करना चाहता है तो भी वो शुरुआत में छोटे स्तर पे करे, और अगर मांस का करना चाहता है तो भी छोटे स्तर पे हम चुनाव उसको करने की बात करते हैं। लेकिन जैसे अंडे के लिए वो पालन करना चाहता है तो उसमें समय चूंकि ज्यादा लगता है, इसलिए हम किसान को पहले सलाह ये देते हैं कि वो मांस वाली मुर्गियों का अगर पालन पोषण कर ले एक साल छह महीने, तो वो पोल्ट्री या मुर्गी पालन के बारे में उसको सारी तकनीकी जानकारियां साल छह महीने में हो जाती हैं, तब वो अंडे के पालन का शुरुआत करे तो ज्यादा फायदे उसके लिए साबित होगा।
कौन कौन सी प्रजातियों को पालने से किसान भाइयों को फायदा हो सकता है?
ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। कोई भी व्यवसाय करने से पहले किसान को ये जानना आवश्यक होता है कि वो किस प्रजाति का चुनाव करे, क्योंकि जैसा आप जानती हैं कि खेती में भी हम लोग कहते हैं कि अच्छा बीज होगा तभी अच्छा उत्पादन होगा, उसी तरह से पशुपालन में है या पशुधन में है कि वो अच्छी प्रजाति का जब चुनाव करेगा तभी उसको अच्छा उत्पादन मिल सकेगा। जैसा कि अंडे के लिए आपने प्रश्न पूछा कि अंडे देने वाली कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जिनका किसान चुनाव करे। देखिए, अंडा उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से जो हम लोग प्रजाति की बात करते हैं वो व्हाइट लेगहॉर्न के नाम से है, उसका चुनाव किसान भाई कर सकते हैं। व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी जो है वो बहुत अच्छी प्रजाति है मुर्गियों में अंडा देने के लिए। अंडे सफेद रंग की देती है और साल भर में लगभग 300 से लेकर के 320 अंडे तक देती है, इससे अच्छी कोई प्रजाति नहीं है। तो किसान भाई जो अंडे का काम करना चाहते हैं वो व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी का चुनाव करके कर सकते हैं।
जो किसान भाई मांस का व्यवसाय करना चाहते हैं, वे कौन सी प्रजाति की मुर्गियों का प्रयोग करें जिससे उन्हें ज्यादा लाभ हो?
जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो मांस का उत्पादन, मांस वाली मुर्गियों का उत्पादन करना चाहते हैं। उसका कारण है कि वो मांस वाली मुर्गियां बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो मांस वाली मुर्गियों का जो भी, जिसको हम ब्रॉयलर के नाम से जानते हैं, किसान इस बात को जानता है कि ब्रॉयलर पालन, अंडा उत्पादन, दो चीजें जानता है, लेकिन मांस के लिए या ब्रॉयलर उत्पादन जो किसान भाई करना चाह रहे हैं उसके लिए देखिए, जो प्रजातियों का हम लोग बात करते हैं उसमें चूंकि ये प्रजाति का चुनाव करना किसान के ऊपर निर्भर करता है कि बहुत सी इसमें प्रजातियां हैं, अलग अलग हैचरीज हैं जो अलग अलग नाम से इसका उत्पादन करती हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक विशेष प्रजाति का कोई नाम नहीं होता है, इसमें दो तीन प्रजातियों का क्रॉस करके हम लोग फिर उसका प्रजात निकालते हैं, तो जिससे उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है या वृद्धि दर बहुत अच्छी होती है, तो उसका चुनाव किसान भाई करेंगे। जैसे कि तमाम इस समय जो हमारे पास प्रजातियां हैं उसमें आपका आरबेकर की है, आपका काब की है, ये क्रॉसब्रीड जितनी आती हैं ये अलग अलग नाम से आती हैं। आपका कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो बहुत कम दिन में तैयार हो जाती हैं, उसमें किसान भाई विभिन्न हैचरियों के जो उत्पाद हैं जो निकालते हैं वो कोई विशेष नाम नहीं देते हैं क्योंकि ये क्रॉसिंग से निकाली जाती हैं, लेकिन जो प्रमुख प्रजाति है जैसे व्हाइट कॉर्निस, व्हाइट प्लाइमाउथ का, इसका हम लोग क्रॉस करके निकलवाते हैं, तो जो उससे पहला जनरेशन में जो चूजे निकलते हैं उनको हम बाजार में भेजते हैं, वो ब्रॉयलर के लिए उत्पादन में लिया जाता है। तो हैचरी का ऐसा किसान भाई देख लें कि किस हैचरी का जो चूजा आ रहा है मांस के लिए उसकी वृद्धि दर वो लोग क्या बताते हैं, कितनी अच्छी है, जितनी कम समय में वो तैयार हो उस प्रजाति का चयन करें तो ज्यादा फायदेमंद साबित होगा।
हमारे किसान भाई जिन मुर्गियों से व्यवसाय करना चाहते हैं उन मुर्गियों की आवासीय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए?
जी देखिए, जब किसान भाई मुर्गी फार्म का काम या मुर्गी पालन का काम शुरुआत कर रहे हों, तो मैंने जैसा कि पहले ही बताया कैसे स्थान चुनाव करेंगे, कहाँ पालेंगे, तो सबसे पहली बात ये आती है कि मान लीजिए किसान भाई हमारे जितने हैं वो प्रजाति जान गए, कहाँ पालेंगे, स्थान का चुनाव कर लिए, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उन प्रजातियों को, चाहे वो अंडे का काम कर रहे हैं या मांस का काम करने जा रहे हैं, वो कहाँ उन मुर्गियों को पालेंगे, तो उसके लिए हमको उनको रहने के लिए आवास की आवश्यकता होती है, या जिसको हम कहते हैं मुर्गी का तड़बा गांव में किसान भाई कहते हैं, लेकिन उसी को जब हम वैज्ञानिक रूप में देखते हैं तो उसको हम कहते हैं मुर्गियों के लिए आवास व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो हमारे किसान भाई चाहे वो अंडे का पालन कर रहे हों या मांस उत्पादन का काम करना चाहते हों, जो मुर्गियों के लिए आवास की व्यवस्था हम करते हैं वो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि उनको एक मुर्गी को क्या स्थान दिया जाता है उसके ऊपर हम उनके आवास का निर्माण करते हैं। जैसे कि अंडे देने वाली मुर्गी अगर वो पालन पोषण करना चाहते हैं तो दो तरह से अंडे देने वाली मुर्गी को पालते हैं। एक तो हम पालते हैं केज सिस्टम, जिसको हम पिजड़ादार जाली बनाते हैं। दूसरा यह है कि हम डीप लीटर सिस्टम से पालते हैं, जिसको हम जमीन पे बिछावन डाल करके उनको पालते हैं। तो दोनों में अंतर ये है कि जो किसान भाई बिछावन के रूप में मुर्गी पालन का काम करना चाहते हैं, खासकर अंडे के लिए, तो उसमें जगह की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिछावन पे जब मुर्गी को पालेंगे तो एक मुर्गी के लिए लगभग दो से लेकर के ढाई वर्ग फीट स्थान हम उनको देंगे, जगह देंगे। तो इस तरह से अगर कोई किसान 1000 मुर्गी से पालन पोषण शुरू कर रहा है तो उसको लगभग 2 से 2500 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन उसी को जब हम केज सिस्टम में या केज पद्धति से पालन पोषण करने की बात करेंगे, जो आज का वैज्ञानिक युग में हम लोग बिल्कुल केज सिस्टम पे ही आधारित अंडे का उत्पादन हो रहा है, तो उसमें उसकी जगह घटकर के बहुत कम हो जाती है, लगभग 0.25 वर्ग फीट में उनका काम चल जाता है। लगभग 1.5 वर्ग फीट के पिछड़ेदार जाली में 2 से 3 मुर्गियां हम रख लेते हैं, और कहां हम एक मुर्गी के लिए लगभग 2 से 2.5 वर्ग फीट स्थान देते हैं, तो इस तरह से केज सिस्टम में वो जगह बहुत कम हो जाती है, लगभग 1/3 भाग में ही एक मुर्गी को पालन पोषण हो जाता है। तो किसान भाई ये सुनिश्चित कर लेंगे कि पहले वो बिछावन पद्धति से पालना चाहते हैं या केज सिस्टम से। लेकिन आज का जो वैज्ञानिक युग है, अगर नया किसान है तो शुरुआत करने के लिए वो बिछावन पद्धति से पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन जब हम व्यावसायिक उत्पादन की बात जब आगे चलकर करेंगे तो वो केज सिस्टम से ही, उनको केज पद्धति से ही अंडे का उत्पादन करना होगा। तो इसके लिए जो आवास का निर्माण होगा, हमने पहले ही बताया कि मुर्गियों की संख्या के ऊपर उसके आवास का निर्माण करेंगे, लेकिन वहीं जब हम मांस उत्पादन की बात करेंगे तो उसके लिए जो आवास का निर्माण किया जाएगा, जगह की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, उसमें एक मुर्गी के लिए 1 वर्ग फीट स्थान की जरूरत पड़ती है। ये सुनिश्चित इस पे होता है कि उनका एक दिन से जब चूजे का पालन पोषण हम करेंगे, एक दिन से लेकर के 30 दिन तक हम मांस उत्पादन का काम करते हैं, लगभग 30 दिन में हमारी मुर्गियां खाने योग्य तैयार हो जाती हैं, तो उसका अलग अलग स्टेज पे अलग अलग स्थान देने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि एक दिन से लेकर के लगभग 12 से 14 दिन तक जो हम मुर्गी चूजे को जगह देंगे वो लगभग 0.25 वर्ग फीट के हिसाब से हम जगह देंगे, और जैसे जैसे उसका विकास होगा, उसकी वृद्धि दर बढ़ेगी, वैसे वैसे हम स्थान उसको बढ़ाते जाएंगे और लगभग 20 दिन के बाद 1 वर्ग फुट के हिसाब से हम उसको जगह बढ़ा देंगे। तो ये तो सुनिश्चित हो गया कि किसान अगर अपनी संख्या के ऊपर निर्धारित करेगा तो उसको कितनी जगह देनी है। अब बात आती है कि आवास का, कैसा आवास होना चाहिए। आवास के लिए किसान भाई ये जरूर ध्यान रखेंगे कि मुर्गी का आवास बनाते समय ये ध्यान देंगे कि लंबाई चौड़ाई का जरूर ध्यान रखेंगे। लंबाई उसकी जो होगी पूर्व और पश्चिम दिशा में आप उसको रखेंगे, लंबाई जितना चाहे रख सकते हैं, लेकिन जो खुला हुआ उसका स्थान होगा वो उत्तर दक्षिण की दिशा में होगा। मतलब जैसे एक मुर्गी के 100 मुर्गियों के लिए किसान को, मैं उदाहरण के रूप में बता दूं, 100 मुर्गियों के लिए ब्रायलर पालन करना चाहता है तो 100 वर्ग फीट जगह की जरूरत पड़ेगी। अब 100 वर्ग फीट में अगर किसान लगभग 20 फीट या 15 फीट लंबाई में रखता है और लगभग 8 फीट या 7 फीट चौड़ाई में रखता है, तो 15 फीट की जो लंबाई वाली जगह होगी वो आपका उत्तर और दक्षिण दिशा में, पूर्व और पश्चिम दिशा में होगा। लंबी वाली दीवार पूर्व पश्चिम में होगी और चौड़ाई उत्तर दक्षिण में होगी। इसका कारण ये है कि हमारे देश में जो हवाएं चलती हैं, चाहे वो गर्मी में हो या सर्दी में हो, वो पूर्वा और पछुआ ज्यादा चलती है। तो उसमें होगा क्या कि जब अगर पूर्व और पश्चिम दिशा में ज्यादा दीवार खाली रहेगी, क्योंकि हम उसमें अभी आगे चल के बताएंगे कि उसमें कितनी जालियां लगेंगी, क्या लगेगा, तो उसमें हवाओं, जो हवा जब तेज चलेगी तो अंदर सारी हवा अंदर प्रवेश करेगी, सर्दियों में सर्दी लगेगी, गर्मियों में पूर्व पश्चिम दिशा से सूर्य निकलता है तो गर्मी ज्यादा अंदर जाएगी तो उसमें गर्मी होगा। इसलिए उसका निर्माण करते समय इस बात को जरूर ध्यान रखें कि उत्तर और दक्षिण दिशा में आप जाली रखेंगे और पूर्व और पश्चिम दिशा में आप पूरी की पूरी दीवार खड़ी करेंगे, और आने जाने का जो रास्ता होगा वो आप चाहे उत्तर दिशा में रखें चाहे दक्षिण दिशा में रखें, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार रखेंगे। तो इसके लिए जो आवास हमारे किसान भाई बनाएंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो भी आवास मुर्गियों का होता है एकदम बिल्कुल खुला होगा। जिस तरह से हम अपना आवास बनाते हैं, या किसान भाई किस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे गांव में जो लोग पशुधन का काम कर रहे हैं, दूध उत्पादन का काम कर रहे हैं, जैसे छप्पर बनाते हैं, बिल्कुल खुला, दोनों तरफ से छप्पर उठा दिए, दोनों तरफ से ऊपर झुकाव रहता है और बगल से चारों तरफ से खाली छोड़ते हैं, उसी तरह से मुर्गियों का भी आवास बनेगा। हो सकता है कुछ किसान भाई मुर्गी का दरबा देखे हों, जो लोग नहीं देखे हैं वो अपने निकटतम कोई अगर मुर्गी का फार्म हो या हमारे विश्वविद्यालय में आ जाएं, हम लोगों के पास फार्म बने हुए हैं, उसको देख लें तो उनको बड़ा आसानी हो जाएगी बनाने में। तो आवास निर्माण करते समय चाहे वो पक्का बनाए या कच्चा बनाए, जैसी उनके पास सुविधा हो, हमारे पास उनकी व्यवस्था के अनुसार आवास का निर्माण होगा। अगर वो पक्का आवास बनाते हैं तो उस पर व्यय ज्यादा पड़ेगा, कच्चा आवास बनाते हैं तो उस पर कम खर्चा आएगा। इस चीज को देख करके छत की बात हम जब करेंगे, छत चाहे वो पक्का बना सकते हैं या आजकल मुर्गी में जो मुर्गी पालन में जो हम लोग छत डलवाते हैं वो सीमेंट की चद्दर जो आती है उसके ज्यादा प्रयोग होता है और उसके ऊपर पे हम लोग छप्पर डलवा देते हैं जिससे सर्दियों में सर्दी कम लगे, गर्मियों में गर्मी कम लगे। तो ये सुनिश्चित किसान को करना है कि उसके पास कितनी आमदनी है, कितना पैसा है, उसके अनुसार वो अपने आवास के पैसे का खर्च करेगा। और दूसरी चीज ये है कि जैसा हमने बताया पूर्व और पश्चिम दिशा में बिल्कुल खुला रहेगा, जमीन से या यूं कह लीजिए फर्श से जो उसकी ऊंचाई दीवार की होगी वो लगभग 9 से लेकर के 12 इंच होगी, उसके ऊपर सारा खुला रहेगा, सब महीन जालियां आती हैं, लगभग 1.25 इंच वर्ग फीट की खुली हुई जालियां आती हैं, मोटी जालियां होंगी, किसान भाई उस जाली का प्रयोग करेंगे और वो ऊपर तक जहां तक छत जहां हम निर्माण करते हैं छत पड़ेगा वहां तक सारी जालियां लगेंगी। जालियां लगाने का हमारा मकसद यह है कि मुर्गी पालन का काम जब हम लोग करेंगे तो उसमें तमाम तरह की गैस निकलती है, जब सारा पूरा पश्चिम दिशा में खुला रहेगा तो गैस सब बाहर निकल जाएगी और मुर्गियों को अच्छा हवा मिलेगा, स्वच्छ वातावरण में रहेंगी तो उनका विकास अच्छा होगा। तो इन बातों को ध्यान में रख करके किसान भाई आवास का निर्माण करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको अच्छा आमदनी मिलेगी, अच्छा लाभ मिलेगा। और ये आवास तो एक हमने बता दिया कि चाहे वो अंडे का काम करें या मांस के लिए करें किस तरह होगा, लेकिन एक दूसरा इसमें मुर्गियों को जैसे हमने बताया कि जब वो किसान भाई पालन पोषण करेंगे तो सबसे पहले चूजा उनके फार्म पे आएगा, एक दिवसीय चूजा आता है उसके लिए अलग आवास की व्यवस्था करनी होगी, जब वो लगभग 5 से 6 सप्ताह का हो जाएगा तो उसको फिर दूसरे आवास में हम ट्रांसफर करेंगे तो उसके लिए दूसरे आवास की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन जहां पे हम ब्रूडिंग करेंगे या चूजों को पालेंगे पोसेंगे जिसको हम ब्रूडिंग या चूजों का उस्मायन कहते हैं उसके लिए जो आवास होगा वो थोड़ा सा उस आवास से अलग होगा। चूजों के उस्मायन के लिए जहां पे हम चूजों का पालन पोषण करेंगे वो जो घर किसान भाई हमारे बनाएंगे वो थोड़ा सा उससे अलग बनाएंगे, इसमें जो जाली लगेगी वो लगभग 3 फुट के ऊपर लगेगी और जो अंडे के लिए और मांस के लिए जो हमने कहा कि लगभग 5 सप्ताह बाद अंडे के लिए जो चूजे ट्रांसफर करेंगे दूसरे आवास में और ब्रायलर में 15 दिन बाद ट्रांसफर करेंगे तो उसमें 9 इंच के बाद जाली लगाते हैं, लेकिन इसमें लगभग 2.5 से 3 फुट के ऊपर जाली लगाएंगे। तो इस तरह से जाली जो ब्रूडर हाउस होगा उसमें जाली छोटी जालियां लगेंगी और उसमें दीवार नीचे से लगभग 3 फुट होगा तो जाले में उनको पर्दे लगाने में उसको ज्यादा गर्मी देने के लिए उनको उस तरह का आवास की व्यवस्था करनी पड़ेगी और जो बड़े मुर्गियां हों उनको ज्यादा खुला वातावरण की जरूरत पड़ती है तो उस तरह के आवास निर्माण में किसानों को ध्यान देना है। तो ये आवास का निर्माण करते समय किसान भाइयों को इस पे ध्यान रखना होगा तो निश्चित तौर पर उनसे अच्छा उत्पादन ले सकेंगे।
आवासीय व्यवस्था के बाद मुर्गियों का किस तरह से पालन पोषण करना चाहिए?
आपने ठीक प्रश्न पूछा, किसान भाई चूंकि मुर्गी पालन का काम शुरू कर रहे हैं तो आवास का निर्माण अगर हो गया तो उस आवास में किस तरह का कैसे शुरुआत करेंगे, पालन पोषण करेंगे, तो उसके बारे में जानना आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो भी किसान भाई चाहे अंडे का उत्पादन करना चाह रहे हैं चाहे मांस का उत्पादन करना चाह रहे हैं तो उनके लिए अब ये बात उठती है कि अगर वो अंडे के लिए उत्पादन करना चाह रहे हैं या मांस के लिए तो जो प्रजाति हमने बताया जैसे कि अंडे के लिए हमने बताया था कि व्हाइट लेघान प्रजाति लाएंगे और वो ज्यादा अंडा देगी तो किसान ये जानना चाह रहा होगा कि व्हाइट लेघान की जो मुर्गी है वो मुर्गी सीधे आ जाएगी सीधे अंडा देना शुरू करेगी या उसका बच्चा आएगा या अंडा आएगा कैसे उलाएगा। तो मैं किसान भाई आप लोग जान लें कि आप लोगों को चाहे अंडे का उत्पादन करेंगे चाहे मांस का उत्पादन करेंगे आपको एक दिन का चूजा मिलेगा, एक दिवसीय चूजा आपको ले आना पड़ेगा और एक दिन का चूजा आप अपने निकटतम जो भी चाहे जिला हो चाहे बाजार हो चाहे कस्बा हो वहां पे बहुत से लोग होंगे जो आपको चूजे की सप्लाई करते हैं, उसके फीड की सप्लाई करते हैं, दवाइयां देते हैं, उनसे आप संपर्क करें या हमारे विश्वविद्यालय में हमसे आप खुद संपर्क करें तो आपको बताया जाएगा कि एक दिन का चूजा चाहे अंडे के लिए हो, अंडा उत्पादन करना चाह रहे हो कहाँ से मिलेगा, और या मांस उत्पादन करना चाह रहे हो तो आप पहले सुनिश्चित कर लेंगे। मान लीजिए आप शुरुआत, मैं तो चाहूंगा कि जो नए लोग हैं वो शुरुआत मांस उत्पादन से करें, क्योंकि मांस उत्पादन का काम जब आप शुरू करेंगे तो ये बहुत कम समय में आपका लगभग 25 से 30 दिन में ही ये पूरी की पूरी फसल आप कह लीजिए, जैसे आप एक बार धान गेहूं लगाते हैं तो 6 महीने लगता है, जब आप मुर्गी पालन का काम करेंगे खासकर मांस उत्पादन का तो आपकी फसल मुश्किल से 30 से लेकर के 35 दिन में तैयार हो जाएगी। आपने उस पर क्या लगाया, क्या खोया, क्या पाया, कितना खर्च किया, बिल्कुल 35 दिन में 30 दिन में आपको पता चल जाएगा, उससे कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ, सब आपको मालूम हो जाएगा। तो आप किस तरह से जान सकते हैं कि आपकी ये फसल 35 से 40 दिन की है और साल में लगभग 8 से 10 फसल उसी जमीन पे उसी जगह पे आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर किसान भाई आप कभी न शुरू किए हों मुर्गी पालन का काम, तो शुरुआत मेरी राय के अनुसार आप सबसे पहले मांस उत्पादन का काम करें, जिसको कि हम ब्रॉयलर पालन का काम कहते हैं। जब ये काम आप 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर, जब तक आपका मन चाहे करें, और जब आपको संपूर्ण जानकारी इसकी हो जाए कि मुर्गी पालन में किन किन छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान रखा जाए, तब आप ब्रॉयलर या अंडे के उत्पादन में आए, अगर आप अंडा उत्पादन करना चाहते हैं तब, और उसके बाद फिर अंडे का काम करें, तो आपको सारी जानकारी पहले से रहेगी। ये बात मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि अंडे वाली जो मुर्गियां हैं वो लगभग 4 महीने तक आपको पालना ही है, 4 महीने तक वो कुछ आपको नहीं देगी। 4 महीने या लगभग आप कह लीजिए 16 से 17 सप्ताह बाद ही, जब बहुत अच्छी तरह से आप पालन पोषण करेंगे, तब वो पहला अंडा देगी। कहने का हमारा मतलब यह है लगभग 4 महीने तक आपके उसके ऊपर व्यय ही करना है, खर्च ही करना है, आपको 4 महीने तक कुछ उससे नहीं मिलेगा। इसलिए उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा रिस्क फैक्टर भी है, तो ऐसी दशा में आप पहले जब मांस का काम कर लेंगे तो सारी जानकारियां जब आपको हो जाएंगी तब आप अंडे के उत्पादन की तरफ जाएं। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि एक दिन का चूजा आपको मिल गया, एक दिन के चूजे को ला करके जो बिल्कुल बहुत छोटा होगा, लगभग 38 से 42 ग्राम का एक दिन का चूजा होता है, 38 से 42 ग्राम के चूजे को पालने के लिए किन किन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है, ये बहुत बड़ा चीज है और ये सबसे पहला फैक्टर है जिसके ऊपर आपको विशेष निगरानी रखनी पड़ती है। 24 घंटे एक ही चूजे के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। इसको हम कहते हैं ब्रूडिंग मैनेजमेंट या चूजों का उष्मायना, हिंदी में जिसको हम कहते हैं, या चूजों को गर्मी देना, चूजों का पालन पोषण करना। एक दिन का चूजा, जैसे मान लीजिए अब आपने चूजे की डेट डिसाइड कर लिया, किस तारीख को हमारे फार्म पे चूजा आ जाएगा, उससे पहले कुछ सावधानियों को आपको ध्यान देना होगा। जैसे आपका आवास बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो गया, तैयार है, आवास में चूजों को कैसे डालेंगे, सीधे आवास में तो आप ला के डालेंगे नहीं, तो आवास में चूजा डालने से पहले उस जमीन पे उसके बिछावन की आप व्यवस्था करेंगे। बिछावन के लिए आपके पास जो भी सस्ती से सस्ती चीज, जैसे धान की भूसी या लकड़ी का बुरादा, या कुछ लोग ये गेहूं का भूसा भी डाल सकते हैं, लेकिन गेहूं का भूसा बहुत महंगा है इस समय, हमें पहले ही कहा जो सबसे सस्ता हो, चाहे धान की भूसी हर जगह मिल जाती है, लकड़ी का बुरादा बीच में नहीं मिल पा रहा था लेकिन फिर सरकार ने परमिशन दे दिया है, फिर बुरादा मिलने लगा है, आरा मशीन फिर शुरू हो गई है, तो जो भी आपको आसानी से मिल जाए, मान लीजिए धान की भूसी आपको आसानी से मिल रही है तो धान की भूसी आप पहले ले आए। मान लीजिए आपने 500 चूजों से मुर्गी पालन का काम शुरू किया है मांस उत्पादन का, तो 500 चूजों के लिए लगभग आप 150 से 200 वर्ग फीट में धान की भूसी पूरी तरह जमीन पे फैला लीजिए, और ये धान की भूसी कितना डालेंगे ये भी बहुत ध्यान देने योग्य बात है। लगभग 1.5 से 2 इंच भूसी आप खूब अच्छी तरह से फैला लें। इसके बाद उस पे आप जो अखबार पढ़ते हैं, जो अखबार पढ़ चुके हैं उसको रद्दी में आप बेचते हैं, उस अखबार को उस धान की भूसी पे 2-3 पद खूब अच्छी तरह से बिछा लें। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि धान की भूसी पे आप या लकड़ी के बुरादे पे अखबार बिछा लें, इसलिए कह रहा हूं कि जो एक दिन का चूजा आपके फार्म पे आया है उसको अभी कुछ नहीं, वो सिर्फ अंडे से निकला सीधे आपके फार्म पे आ गया, उसको न पानी मिला है न उसको आहार से दिया गया है, सीधे आपके फार्म पे आया है। तो पहली बार वो जो भी चीज पाएगा जमीन पे वो खाने की कोशिश करेगा, तो कहीं ऐसा ना हो धान की भूसी खा ले या लकड़ी का बुरादा खा ले तो वो नुकसान कर जाएगा। इसलिए तीन चार दिन तक वो हम जो रद्दी कागज है उसको दो तीन तरह में आप बिछा लें। रद्दी कागज बिछाने के बाद उसमें गर्मी का पूरा प्रबंध आपको करना होगा। मैं आप किसान भाई आपको बता दूं, क्योंकि ज्यादा शिकायत जो हमारे किसानों को हमको मिलती है वो यही कहते हैं हमने सूजा पाला साहब, सारे सूजे मर गए। तो मर इसलिए गए, सूजे मरते नहीं है, मार दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं। जब तक आपको संपूर्ण जानकारी नहीं होगी तो सूजे मरते रहेंगे। चूजों को बारह महीना, साल के बारह महीने इतनी गर्मी की आवश्यकता होती है, एक दिन से लेकर के लगभग पंद्रह दिन के चूजों को आपको जो शुरुआत में होली के बाद की जो गर्मी जिसको हम कहते हैं मार्च अप्रैल का महीना जो होता है उसमें जितनी गर्मी शुरुआत में पड़ती है उतनी गर्मी बारह महीना चाहिए। अब आप मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अक्टूबर तक तो ये गर्मी ले लेंगे, लेकिन अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक जो ठंड जब पड़ती है उस समय इस गर्मी को देने के लिए आपको अलग से व्यवस्था करनी होगी। उस व्यवस्था को चाहे आप बिजली से दें या कोयले की अंगीठी से दें या आपका लकड़ी का बुरादा वाली अंगीठी से दें, जैसे भी आप दे सकते हैं उस गर्मी को आपको देना है। या आप इसको यूं कह लीजिए कि एक दिन से लेकर के सात दिन तक लगभग 95 डिग्री फारेनहाइट तापमान की आवश्यकता चूजों को होती है, और हर सप्ताह लगभग 5 डिग्री फारेनहाइट तापमान आप कम करते जाएंगे तो लगभग 15 दिन के बाद वो 80 से 85 डिग्री फारेनहाइट तापमान पे आएंगी, और 20 दिन के बाद वो तापमान फिर घट करके 75 से 80 डिग्री पे आ जाएगा। तो धीरे धीरे तापमान आप कम करेंगे। अब तापमान मान लीजिए सर्दियों से आपने शुरू किया, सर्दियों में आप कहेंगे तापमान कैसे करेंगे, हमने उसमें लकड़ी का कोयले की अंगीठी लगा दिया है या हीटर लगाया है या बल्ब से आप रोशनी लाइट गर्मी दे रहे हैं। तो जैसे जैसे गर्मी आपको लगे उसमें से एक दो बल्ब आप कम करते जाएंगे या हीटर आप दो तीन लगाए हैं तो हीटर बंद कर देंगे। ये आपको सुनिश्चित करना है कि उसमें गर्मी पूरी होनी चाहिए। गर्मी जानने का जो आपको तरीका होता है, एक तो ये होता है थर्मामीटर लगा लें, उससे आप गर्मी जानेंगे, वो आपको बताता रहेगा कि उसमें कितना तापमान है। दूसरा तरीका ये है किसान भाई, जो आप वही ज्यादा फायदेमंद होगा, कि जब भी आप अपने ब्रूडर हाउस में या उस मायन गृह में प्रवेश करें तो आपके चूजे पूरे घर में चारों तरफ समान रूप से अगर बिखरे हैं और बड़े आराम से दाना पानी ले रहे हैं तो आप समझिए कि उसमें तापमान या गर्मी पूरी मात्रा में उनको उचित मात्रा में मिल रही है। लेकिन अगर तापमान कम होगा तो वो चूजे जहां पे आपने गर्मी दिया है, चाहे हीटर लगाया है, चाहे बल्ब लटकाया है या अंगीठी रखा है, तो सारे के सारे चूजे उसी हीटर के पास चले जाएंगे या बल्ब के नीचे इकट्ठा हो जाएंगे, तो आप जान जाएंगे कि गर्मी कम है, फिर आप गर्मी को बढ़ाने का इंतजाम करेंगे। अगर गर्मी ज्यादा हो गई है उस घर में तो सारे के सारे चूजे दीवार के किनारे जाकर के सड़ जाएंगे। कहने का मतलब ये गर्मी से दूर भाग जाएंगे, हीटर से दूर भाग जाएंगे, तो आपको गर्मी उसी अनुपात में कम करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सबसे अच्छा ग्रामीण तरीका है कि आप अपने चूजे को गर्मी किस तरह से देंगे या जान जाएंगे। तो ये जो हुआ गर्मी देने की, ये प्रबंध आप कम से कम 24 घंटे चूजा डालने से पहले कर लेंगे। दूसरा जो प्रबंध की बात आती है उनके पानी का प्रबंध होगा, क्योंकि चूजा एक दिन का आया है उसको पानी नहीं मिला है। पानी आप पूरे से उसमें गृह में जितनी चूजे हैं 100 चूजों पे कम से कम दो से लेकर के तीन चूजे का पानी पीने वाला बर्तन होना चाहिए। पानी पीने वाला बर्तन आजकल प्लास्टिक का बाजार में उपलब्ध है, अगर आप उससे ही सस्ता लेना चाहते हैं तो मिट्टी के घड़े छोटे छोटे आते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तो है प्लास्टिक का बर्तन, अगर आप जो पानी पीने का उनका आ रहा है 2 लीटर से लेकर के 10 लीटर तक की क्षमता का आता है, चूजे के लिए छोटा प्लास्टिक का बर्तन होगा, बड़े के लिए जिससे बड़े होंगे उससे बड़े बर्तन आप लेंगे। तो 2 से 3 बर्तन कम से कम पानी के रखने होंगे, और पानी आपको इतना रखना होगा कि वो चूजे बड़े आसानी से पी लें। दिन में कम से कम 2-3 बार पानी, साफ पानी की व्यवस्था आप करेंगे। पहले दिन आप उस सूजी जो पानी आप दे रहे हैं वो बिल्कुल अगर जाड़ा है तो थोड़ा गुनगुना होना चाहिए, मतलब रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, कमरे का जो तापमान है पानी का तापमान उतना हो तो अच्छा है। या सीधे अगर आप नल से पानी ले रहे हैं तो तुरंत गर्म पानी निकलता है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। पानी देने समय किन किन बातों का ध्यान देना है, क्योंकि चूजा जो आप मंगा रहे हैं वो बहुत दूर से आता है, कहीं गोरखपुर से आएगा, कहीं कलकत्ता से आएगा, कहीं मतलब दूरी की कोई, आप जिस तरह से जहां का चूजा लेंगे उतनी दूरी से आएगा। चूजों को उतनी दूरी से आने पर उनके ऊपर स्ट्रेस दबाव पड़ता है, जैसे कि हम लोग गर्मी में बहुत दूर से जब आते हैं तो पानी सीधे पीने का मन नहीं करता है, तो हम लोग चाहते हैं कि अगर गुड़ मिल जाता तो ज्यादा पानी पीते। उसी तरह से जो हमारे चूजे हैं दूर से आए हैं, रास्ते में उनको इतनी थकावट लगती है, उसके लिए उसमें पानी में चाहे तो आप इलेक्ट्रॉल का प्रयोग करें, या सबसे आसान तरीका आपके घर पे गुड़ होगा, राब होगी, उसको आप पानी में डालें, एक 100 चूजे के ऊपर लगभग 50 से लेकर के 60 ग्राम गुड़ आप डाल सकते हैं, और एक लीटर में 50 से 60 ग्राम गुड़ मिला लीजिए, और साथ में कुछ ऐसी दवाइयों का आपको प्रयोग करना है जैसे एंटीबायोटिक, जो भी एंटीबायोटिक मुर्गियों का आपके निकटतम जो पशुओं की दवाइयां देते हैं वहां से आप संपर्क कर लें, कोई भी एंटीबायोटिक हो, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या कोई भी हो, क्यूरासाल, जितने भी जिस भी कंपनी का मिले उसको आप ले करके कोई भी एंटीबायोटिक, वो कंपनी का दिशा निर्देश उसमें देख लें कि पानी की मात्रा के अनुसार उसमें लिखा होता है कि 1 ग्राम 1 लीटर में मिलाएंगे, आधा ग्राम 1 लीटर में मिलाएंगे, जो दिशा निर्देश हो उसके अनुसार आप पानी में उतना एंटीबायोटिक मिला लें। कोई विटामिन ए, जो भी विटामिन ए आपको बाजार में मिले उसको ले लें, 100 चूजों पे लगभग 5 मिलीलीटर विटामिन ए का प्रयोग करेंगे, और विटामिन डी कॉम्प्लेक्स 15 से 20 मिलीलीटर 100 चूजों पे डालेंगे। ये तीनों चीजें उसी पानी में आप मिला करके पानी के बर्तन में उसको डाल दीजिए, और पानी का बर्तन जो बाजार में आता है उसी बर्तन का आप प्रयोग करेंगे। दूसरे बर्तन का आप प्रयोग करेंगे तो चूजे सीधे पानी में कूद जाएंगे और सारे के सारे चूजे भीग जाएंगे, उससे उनको ठंड लगेगी और मर सकते हैं। इसलिए जो उनके लिए चूजे का बर्तन, पानी का बर्तन आता है उसी बर्तन का आप प्रयोग करेंगे तो उसमें पानी बड़े आसानी से वो चूजे उसी हिसाब से बना रहता है उसको पियेंगे। और फिर आप जब चूजा ले आए हैं, एक एक चूजा उस डिब्बे से ब्रूडर हाउस में ले जाएंगे, एक एक चूजे को निकालें और उसको चोंच हल्का सा उस पानी में डुबोएं, जिससे उसको ये आभास हो जाएगा कि मेरे लिए यहाँ पे कुछ पीने के लिए रखा हुआ होगा। आप चाहे तो सभी चूजों को उस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो लगभग 25-30% चूजों का पकड़ करके पानी में उनका चोंच डुबो दें, थोड़ी देर में आप देखेंगे सारे चूजे पानी पीने लगेंगे। और इस चीज को आप ध्यान रखें कि इतने बर्तन उस समय हों 1 से 2 दिन तक कि सारे चूजे बड़ी आसानी से एक साथ पानी पिए, तो उनको उनका विकास अच्छा होगा। और पानी लगभग 4 घंटे तक सिर्फ पानी देंगे, पानी देने के बाद फिर आप उनको हम आहार की व्यवस्था करेंगे और सारी व्यवस्थाएं करेंगे। तो इस तरह से चूजों का, जिसको चूजों का उष्मायन कहते हैं, ये लगभग 15 दिन तक होगा, फिर उसके बाद उनको गर्मी धीरे धीरे कम करते जाएंगे। 3 दिन बाद उसका अखबार जो मैंने बताया था उसको बिल्कुल हटा दीजिए, फिर जब वो दाना पानी खाने लगेंगे तो उनको भूसी और उसे कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो उसी अखबार उठा करके फेंक दिया जाएगा और भूसी पे सीधे या लकड़ी का बुरादा पे वो रहने लगेंगे। और इन सब बातों को आप ध्यान अगर रखेंगे, गर्मी का पूरा प्रबंध करेंगे, तो निश्चित तौर पर चाहे अंडे का उत्पादन कर रहे हैं, अंडे के लिए पाल रहे हो या मांस के लिए पाल रहे हैं, तो उनका विकास बहुत अच्छा होगा और आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इस तरह से चूजों के उस मायन पे इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा।
मुर्गी पालन के वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, मुर्गियों को क्या बीमारियां हो सकती हैं अथवा इसकी कैसे रोकथाम करें?
देखिए, जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि किस तरह से उनका उष्मायन करेंगे, अब बात आती है कि उनके आहार प्रबंधन की व्यवस्था कैसे होगी। देखिए, आहार के ऊपर ही मुर्गी का सब कुछ निर्भर करता है। उनका आहार अगर अच्छा होगा तो उनका विकास अच्छा होगा। जैसे कि हमने पहले बताया, मांस के लिए जो किसान भाई शुरू किए हैं, वो आहार के लिए उसमें 3 तरह का आहार आता है। एक चूजों का 1 दिन से लेकर के लगभग 4 से 5 सप्ताह का आहार आता है, फिर ग्रोवर आहार आता है जो अंडे वाली मुर्गी पालते हैं, फिर फिनिशर के रूप में आहार आता है। ये 3 आहार जो आते हैं, इसमें कोई तकनीकी तौर पे किसानों के लिए आवश्यक नहीं है। इसमें आप इतना जान लें कि उसमें प्रोटीन के हिसाब से हम लोग अंतर रखते हैं। जो चूजों का आहार होता है उसमें 2% प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, 22 से 23% प्रोटीन होती है, उसी तरह से एनर्जी की मात्रा होती है। और जो चूजों के आहार के बाद जो ग्रोअर के लिए आहार होता है उसमें 20 से 22% प्रोटीन की मात्रा होती है। फिर अंडे के लिए जो मुर्गियां पालते हैं उसमें जो लेयर आहार हम कहते हैं उसमें 17 से लेकर 18% तक प्रोटीन की मात्रा हम लोग रखते हैं। तो ये जो फीड वाली कंपनियां हैं वो अपने हिसाब से फीड का निर्माण करती हैं। तो जो चूजों के लिए हमने पहले ही बताया कि जो आहार आप देंगे वो उसको हम स्टार्टर राशन के रूप में कहते हैं। जो भी आहार आप लें, जो भी राशन आप उनको खिलाएं, अच्छी कंपनी का लें। और आपको मैं बता दूं कि पोल्ट्री या मुर्गी के राशन में जो भी कंपनियां हैं बहुत अच्छा राशन बना रही हैं, उनका राशन आप प्रयोग करें। और उसको एक मुर्गी अगर आपने मांस वाली पाला है तो लगभग एक दिन में 100 ग्राम औसत पूरे उसमें वो खाती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब आप उसको आहार देंगे तो आहार इस तरह से देंगे कि उसका नुकसान न हो, क्योंकि लगभग 60 से लेकर 70% तक खर्चा आहार पे ही आता है। तो आहार का नुकसान किसी भी रूप में अगर होगा तो आपका नुकसान होगा। तो आहार मुर्गियां छीटने न पावे, उनका जो फीडिंग की व्यवस्था होगी, जो फीडर होगा जिसमें आहार आप डालेंगे वो इस तरह का हो कि उसमें कम से कम नुकसान हो, वो भी प्लास्टिक का फीडर आ रहा है उसका आप लोग प्रयोग करें। वो उसमें आप आहार डालेंगे तो मुर्गियां अपने हिसाब से वो खाती जाएंगी और नीचे उसी हिसाब से आहार नीचे फिर आता रहेगा। उसमें लगभग 1 से 2% तक का ही नुकसान होता है। लेकिन अगर आप खुले में वो आहार अखबार पे या किसी और बर्तन में खुले में आप डाल दिए तो मुर्गियां उसमें 5 से लेकर 10% तक फीड का नुकसान कर देती हैं। तो निश्चित तौर पे आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये व्यवसायिक युग है, इसमें कम से कम खर्च में आपको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेना है तभी आपको फायदा होगा। तो इस तरह से आप अपने आहार का प्रबंधन करेंगे तो आपका ब्रायलर निश्चित तौर पे 25 से लेकर 30 दिन में लगभग 1 किलोग्राम का हो जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय लगभग 1 किलोग्राम का ब्रायलर तैयार करने में लगभग 30 से लेकर 35 रुपए का खर्चा आ रहा है। जैसे जैसे खर्च बढ़ेगा उसी तरह से, और इस समय जो ब्रायलर का रेट बहुत अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा तो मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा था। दिल्ली का रेट इस समय 68 रुपए केजी चल रहा है और सब जगह कहीं भी इसमें 50 रुपए केजी से कम नहीं है। तो इस समय तो ब्रायलर के जो हमारे किसान भाई हैं बहुत अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। इसी तरह से अंडे का भी बहुत अच्छा मार्केट इस समय चल रहा है। तो इन सब बातों को अगर किसान भाई ध्यान में रखते हुए पालन पोषण करेंगे तो निश्चित तौर पे लाभ कमाएंगे। कुछ बातें आती हैं बीमारियों से संबंधित, जो अब आप मुर्गी पालन का काम करेंगे तो निश्चित तौर पे कोई भी काम आप करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं। लेकिन कुछ बीमारियां जो प्रमुख रूप से होती हैं, जैसे रानीखेत है, आपका डायरिया है, इस तरह की जो बीमारियां हैं और श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं, उसका पहले ही हम लोग टीकाकरण की व्यवस्था कर लेते हैं। जैसा कि बच्चों में रोज दिखाया जाता है टीवी में, इस स्टेज पे ये टीके लगवा लें तो बच्चों को बीमारियां नहीं होती, उसी तरह से हमारे मुर्गी पालन में भी तरह तरह के टीके हैं। 1 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर 2 टीके लगते हैं जो रानीखेत के टीके हैं। वो रानीखेत का टीका जब आप उसको वैक्सीन दे देंगे तो वो रानीखेत की बीमारी नहीं होगी। 10 से 12 दिन पे गंभोरों का टीका आता है, उसका आप टीकाकरण करवा देंगे तो गंभोरों की बीमारी नहीं होगी। 8 से 10 सप्ताह में चेचक का टीका आता है, उसका टीकाकरण आप करवा देंगे तो वो बीमारी नहीं होगी। इस तरह से हमारे फिर आपका 8 से 10 सप्ताह में फिर रानीखेत का दूसरा टीका होता है, जो अंडे वाले मुर्गी पालन का काम करें वो टीका लग जाएगा तो वो लाइफ लॉन्ग उसका हो जाता है, फिर उसमें से रानीखेत की बीमारी नहीं होगी। इस तरह से जो जानलेवा बीमारियां हैं उसका हम लोगों ने वैक्सीन तैयार कर लिया है, वो अगर आप समय समय पे उनका वैक्सीन या टीकाकरण करवाएंगे तो बीमारियां आमतौर पे नहीं होंगी। आजकल आप लोग सुन रहे होंगे बर्ड फ्लू बहुत पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है, बर्ड फ्लू का नाम बहुत लोग लेते हैं। मैं आपको बता दूं बर्ड फ्लू हालांकि कुछ क्षेत्रों में सुना तो जा रहा है जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, बर्ड फ्लू ज्यादातर उन्हीं स्थानों पे होता है जहां पे ठंडा ज्यादा होता है। ये बीमारी विशेषकर तो यूरोपियन कंट्रीज की है, हम लोग तो ये बीमारी अभी 1-2 साल से हमारे यहाँ आई है। ऐसा नहीं कि बीमारी होती नहीं है, बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से ये बीमारी है, लेकिन ये हमारे देश में इतना इसका असर नहीं होता है, क्योंकि हमारे देश में एक दिन में 20 बार तो टेम्परेचर बदलता है, सुबह कुछ और है, शाम को कुछ और है, रात में कुछ और है, इतना तापमान में परिवर्तन होता है कि इसका जो वायरस होता है उस तरह से काम नहीं कर पाता है। लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टिकोण से बर्ड फ्लू नए आपके फार्म पे आए उसके लिए आप एहतियात या सुरक्षा का प्रबंध अपनाएं, उसके लिए आप जो भी फार्म खोलें अपने आसपास कोई फार्म न हो, कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पे न फार्म हो तब अच्छा है, लेकिन फिर भी एक फार्म से लेकर के दूसरे फार्म की दूरी कम से कम 200 मीटर जो भी शेड आप बनाए या आवास बनाए कम से कम 200 मीटर बीच में गैप रखें एक शेड से लेकर के दूसरे शेड के निर्माण के बीच में। दूसरा, आप अपने फार्म में किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर दें। तीसरा, आप अपने गेट पे जो मुख्य गेट है वहां पे कोई कीटनाशक दवा गेट पे चाहे वो पानी में डाले फिनाइल हो या सेवलान हो या और भी कोई कीटनाशक हो जो भी प्रवेश द्वार हो उस पे पानी में मिला करके आप रखें। पानी में नहीं मिला सकते हैं तो आप चूने का मुझा हुआ चूना जो पाउडर के रूप में आता है वो कम से कम इतना दूर तक फैलाएं कि कोई भी व्यक्ति उसमें प्रवेश करे तो बिना उसे पैर रखे न जा पाए। तो इस तरह से आप अपने आवास पे गेट पे ये सारी व्यवस्था करें और सेट में बराबर किसी भी जब भी आपका आवास खाली हो कोई न कोई कीटनाशक का छिड़काव करते रहें और सेट के बाहर भी छिड़काव करें। सफाई की व्यवस्था रखें, एक घर में जितनी मुर्गियों की उनके स्थान के अनुसार मुर्गियां रखनी है उतने रखें, कहने का मतलब भीड़ न करें। अगर 100 मुर्गी रखना हो तो अब कुछ किसान उसमें 200 मुर्गी रख देते हैं वो भी कारण हो सकता है। लीटर का सही प्रबंधन करें, लीटर से मतलब है बिछावन का, उसको बीच बीच में गुड़ाई करते रहें, बिछावन गीला न हो बीच में बदलते रहें, अगर कहीं गीला होता है तो वहां नया भूसी डाल दें। ये सारी चीजें जब हमारे किसान भाई अपने फार्म में अपने पालन में मुर्गी पालन में अपनाएंगे इन सारी बिंदुओं के ऊपर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे कोई बीमारी आपके फार्म पे नहीं होगी और आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। मैं तो कहता हूं इससे कोई फायदेमंद व्यवसाय ही नहीं है क्योंकि इसकी जो मुर्गी की जो खाद आगे चल के हम लोग बात करेंगे कभी मुर्गी की खाद ही अगर उसका आप प्रयोग कर लें तो जितना फायदा मुर्गी की खाद से हो जाएगा वो आपका उतना मुर्गी बेच करके आपको फायदा नहीं होगा, ये फिर आगे चल करके हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद
डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि मुर्गी का पालन कैसे करें। श्रोताओं, आप सुन रहे थे डॉक्टर अनिल कुमार राय जी को और मुझे उम्मीद है कि आपने इनकी बातों को ध्यान से सुना होगा और अमल भी करेंगे। धन्यवाद।